सब बोलिए हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम संडे फिस्ट में आए हुए सभी भक्तों का और अतिथियों का हार्दिक स्वागत। हर रविवार की तरह आज भी हम संडे फिस्ट रविवारीय सत्संग कार्यक्रम मना रहे हैं। इसमें 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन हुआ, 11 से 12 बजे तक प्रवचन होगा। तो मैं सभी अतिथियों और भक्तों से विनती करता हूं कि व्यासासन की तरफ मुख करके बैठ जाइए। तो आज हमें प्रवचन देने के लिए उपस्थित है श्रीमान रसिक गौर हरि प्रभु। रसिक गौर हरि प्रभु जी का परिचय कुछ इस प्रकार। प्रभु जी ने अपना BDS डेंटल, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, ये डिग्री कंप्लीट किया है नायर डेंटल कॉलेज से। उसके पश्चात उन्होंने श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी, यहाँ पर पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी के रूप में सेवा देना चालू किया। कुछ ही सालों में वे गोवर्धन इको विलेज यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के पश्चात उन्होंने अनेकों सेवाएं निभाई है। विशेष रूप से यहाँ पे जो गोवर्धन इको विलेज का गिफ्ट शॉप है उसकी जिम्मेदारी वे संभालते थे। साथ ही साथ गोवर्धन इको विलेज का जो किचन है, मेगा किचन, जहाँ पे एक साथ लगभग 5 से 10 हजार भक्तों का प्रसाद बन सकता है, वहाँ उसका भी उत्तरदायित्व प्रभु जी निभा रहे थे। अभी अनेकों गांवों में जाके प्रभु जी प्रचार करते हैं और यात्रा भी लेके जाते हैं और ऑनलाइन सेमिनार और क्लासेस भी देते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी आज हमें प्रवचन देने के लिए उपलब्ध है। प्रभु जी के प्रवचन का विषय है कलयुग की महिमा। तो आइए प्रभु जी का स्वागत करते हैं पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामो रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय नित्य गौर प्रमाण हरि बोल जय ओम विष्णुनाथ परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टावतार सतीश जैन गज भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टावतार सतीश जैन गज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णवंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कही है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय द्वारकापुरी धाम की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की जय समवेद गौर भक्तवृंद की जय समवेद गौर भक्तवृंद की जय समवेद गौर भक्तवृंद की जय इताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामेयं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखामितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वंदे श्रीगुरु दीनदारिणं परमानंदमानवं। हरे कृष्णा। तो आज के संडे फिश कार्यक्रम में सब अतिथियों का सब भक्तों का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज का टॉपिक का नाम है कलयुग की महिमा। सब सोच रहेंगे कलयुग में क्या महिमा है, क्योंकि कलयुग तो बोलते हैं कि बहुत ही जो चार युग है सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग, तो उसमें से हम जानते हैं कि कलयुग सबसे ही निचला युग माना जाता है, बहुत ही डिग्रेडेड युग माना जाता है। तो इसमें क्या महिमा हो सकती है? तो एक बार एक जो व्यक्ति है एक साधु के पास जाता है और उनसे जो है वो पहले साधु ने जैसा बोला वैसे साधना करता है। उसके बाद साधु उनको दीक्षा देते हैं और उनको एक मंत्र देते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जप करने के लिए देते हैं। और वो बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे एक बहुत ही पवित्र मंत्र मिला है जो बहुत रेयर मिलता है। वो खुश हो जाता है और जाने लगता है अपने घर की तरफ। तो देखता है कि जाते जाते कुछ कपड़े धोने वाले जो लोग हैं वॉशरमैन, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे कपड़े धो रहे हैं। और उसको लगता है अरे मैं तो इतना साधना करके मुझे मंत्र मिला है दीक्षा मिला है और ये कपड़े धोने वाले को भी पता है। फिर तो थोड़ा आगे जाते हैं तो कुछ बच्चे लोग खेलते रहते हैं और उनको वो भी मंत्र का जप करते हैं, तो फिर और अचंभित हो जाता है। थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं वो भी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो थोड़ा अचंभित हो जाता है कि मुझे लगा कि एक स्पेशल मंत्र है तो ये सब लोग कैसे इसको जानते हैं। तो फिर वो वापस कंफ्यूज होकर अपने गुरु के पास जाता है वापस और बोलता है कि आपने ऐसा कौन सा मुझे मंत्र दिया, ये तो कुछ स्पेशल नहीं है, ये तो सबको पता है। गुरु उनको बोलते हैं कि ठीक है आप एक काम करो, वो उनको एक अच्छा एक प्रेशियस स्टोन देते हैं, हीरा देते हैं और बोलते हैं कि ये जाके जिन जिन लोगों को तुमने देखा है उनको पूछो इसका वैल्यू क्या है, वो उसको देंगे तो उसका क्या करेंगे, उसका पूछ के आओ बस क्या करेंगे, उनको देखे मत आना तो पूछ के आओ। तो जाते हैं पहले वॉशरमैन के पास जाता है, पूछते हैं ये अगर तुमको मैं दूंगा तो तुम क्या करोगे, तो वो देखता है हाँ बोलते हैं कपड़े को घिसूंगा इससे कपड़े जल्दी साफ हो जाएंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर बच्चों के पास जाता है, पूछता है अगर आपको ये दिया जाए तो क्या करूँगा, तो बोलते हैं कि जो हम पत्थर यूज़ कर रहे हैं खेलने के लिए तो उसके जगह पे इसको यूज़ कर लेंगे। फिर वो सुन के वापस जाता है। फिर सब्जी वाले के पास जाता है, बोलते आपको ये दिया जाए तो क्या करेंगे, बोलते लगता है आधा किलो का है शायद, बोले वजन के काम आएगा सब्जी गिनने के लिए। तो और फिर बाद में जाता है जौहरी के पास, जौहरी के पास जाता है पूछता है कि अगर इसको आपको दूंगा तो किसका क्या वैल्यू है, क्या करेंगे आप। तो जौहरी उसको देखता है ऐसा और अच्छे से देखने के बाद बोलता है ये तो अनमोल हीरा है, अनमोल रत्न है, इसका तो कोई कीमत नहीं है, बहुत ही अनमोल है। और फिर वो जो शिष्य है अपने गुरु के पास वापस आता है और गुरु को बोलते हैं कि जो हुआ सब कुछ बताया। तो इसलिए फिर तभी गुरु बोलते हैं कि देखिए कि जिस प्रकार इस हीरे का कीमत जौहरी को पता है, सबको नहीं पता है। उसी प्रकार जो मैंने महामंत्र दिया है उसका कीमत जो है सबको पता नहीं है। जिसको इसकी जानकारी है कि क्या महत्व है वही इसका लाभ ले सकता है। बाकी लोग जप कर सकते, थोड़ा बहुत उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन जिसको पता है अच्छे से वही इसका अच्छे से लाभ ले सकता है। नहीं तो बाकी लोग इसको बोलेंगे कि ये एक पत्थर की तरह है और उनका कोई भी काम में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जौहरी इसका तो इसलिए बोला जाता है कि कलयुग में अगर हम जो बुद्धिमान लोग हैं वही कलयुग का क्या सार है वो जान सकता है। तो भागवत के 12वें स्कंद में है जो है कलयुग का वर्णन आता है कि कलयुग में जो सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को बताते हैं कि परीक्षित महाराज जो है उनको श्राप मिला रहता है कि 7 दिन में उनका तक्षक नाक के काटने से मृत्यु हो जाएगा। तो वो अपना पूरा भारतवर्ष के पूरे वो राजा रहते हैं, पूरे पृथ्वी के राजा रहते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, गंगा के तट पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि अभी मैं बिना खाए बिना पिए सिर्फ भगवान का गुणगान सुनूंगा। तभी जो है वहाँ सुखदेव गोस्वामी आते हैं। शायद आप लोगों ने सुखदेव गोस्वामी का नाम सुना रहेगा कुछ लोगों ने, जो व्यासदेव के पुत्र थे और वो जो है उनको शरण जाते हैं व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज, और फिर वो कृष्ण कथा करने लगते हैं। तो जब 7वें दिन आखिरी दिन रहता है कथा का, उसके बाद उनका मृत्यु होने वाला रहता है परीक्षित महाराज का, वो बिना 7 दिन बिना कुछ खाए पे वहाँ कथा सुनते हैं। तो जब उनको लास्ट में कलयुग के लक्षणों के बारे में बताते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से सत्य धर्म पवित्रता क्षमा दया आयु शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। क्योंकि सत्ययुग में जो है सब धर्म का जो चारों पैर है वो वैसे स्ट्रांग थे, सब लोग सत्य बोलते थे, धर्म का पालन करते थे, क्षमा थी दया थी पवित्रता का पालन करते थे। फिर जैसे त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया और फिर धीरे धीरे सबका ह्रास होने लगा। उन्होंने बोला कि कलयुग में ये सब जो है आयु शारीरिक बल स्मरण शक्ति सब कुछ कम हो जाएगा। क्योंकि सत्ययुग में तो ऐसा था कि सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग में कि अगर गुरु बोलेंगे तो वही जो शिष्य सुनेगा उसको याद हो जाता था, लिखने का जरूरत नहीं था। जो वेदास थे कुछ भी लिखे हुए नहीं थे, सब कुछ एक बार सुन लिया शिष्य से पूरा गुरु से तो शिष्य का याद हो जाता था। लेकिन कलयुग चालू होने से पहले द्वापर युग के अंत में जो व्यासदेव उन्होंने देखा कि कलयुग में आने के बाद जो अभी चालू हो जाएगा उसमें लोगों का स्मरण शक्ति बहुत ही कम रहेगा, वो याद नहीं रख पाएंगे ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया, फिर सब पुराण सब वेद सब कुछ लिखित रूप में किया ताकि आगे जाके लोग उसका फायदा उठा सके। तो उसमें फिर जो है जब सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे कि सब कुछ कम हो जाएगा, शारीरिक बल सब कुछ कम हो जाएगा, उनको स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगा। फिर आगे वो बोलते हैं कि कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। हम आप देखते हैं आजकल सब ऐसा ही होता है, जिसके पास पैसा है बोलते ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पैसा है उसका कानून है, बस वो बोलेगा वही बड़ा आदमी है, बाकी कोई पवित्र भी रहेगा अच्छे गुणों का भी रहेगा उसके पास उसको कोई मानेगा नहीं। जिसके पास पैसा है वही रूल करेगा, पैसा ही सबसे बड़ा ना बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया कोई नहीं, जो पैसा है बोलते ना आजकल दुनिया में पैसों को सलाम है, पैसा दिखेगा उसको लोग सलाम करेंगे, ऐसा चीज़ है। तो वो ऑलरेडी बता के रखा है कि कलयुग में पैसा ही सब कुछ माना जाएगा, किसी का जो चरित्र है कैसा है वो कोई मानेगा नहीं, कोई चरित्रहीन व्यक्ति रहेगा लेकिन उसका पैसा रहेगा तो सब उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। और जो कानून तथा न्याय तो मनुष्य के केवल बल के अनुसार ही लागू होगा, जो बलवान है जिसका पैसा है उसी का ही कानून रहेगा। और फिर आगे बताते हैं, पुरुष तथा स्त्रियों केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ हो रहेंगे, और जो पुरुष और स्त्रियां है वो सिर्फ ऊपरी शारीरिक आकर्षण के लिए ही एक साथ रहेंगे। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि किसी का कैसा चरित्र है वो कैसे सोचे उनकी, वो नहीं है, सिर्फ आकर्षण है इसलिए प्रेम रहेगा। सिर्फ शारीरिक आकर्षण, शारीरिक आकर्षण है और जितना वो मुझे शारीरिक सुख दे पाएगा उतना ही मुझे आपसे प्रेम है, अगर मुझे तुम शारीरिक सुख नहीं दे पाओगे तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब ये कलयुग के लक्षण है। फिर व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर रहेगी, और व्यापार जो है कपट पे रहेगा, जितना कपटी रहेगा उसका व्यापार उतना आगे बढ़ेगा। और पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र की उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा, और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्बंध रहेगा। कि जो जितना ज्यादा कामुक रहेगा, जितना ज्यादा वो काम शास्त्र में तरबेज रहेगा वही पुरुष है वही स्त्री है वैसा माना जाएगा। और ब्राह्मण कौन है, पालन करे ना करे धर्म का, सिर्फ उसने 50 पैसे का जेने भी पहन लिया तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा, बाकी वो पालन करे या ना करे बाकी धर्मों का। और फिर मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा, और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। मतलब बाह्य पद, जैसे एक आश्रम जैसे संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम है, तो जिस आश्रम में बोलेंगे कि जैसे इसमें दाता प्रतिष्ठा है संन्यास आश्रम में, तो मैं संन्यास लूंगा, लेकिन उसके जो कर्म है वो सन्यासी के नहीं रहेंगे। सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए कोई संन्यास लेगा, या कोई बोलेगा मैं बड़ा स्पिरिचुअल लीडर हूँ, ताकि लोग उसके आजू बाजू घूमे, ऐसा है कलयुग का लक्षण दिया हुआ है। अगर किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा। मतलब अगर कोई जीविका अच्छा नहीं है तो मतलब उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है, घरदार अच्छा नहीं है, उसका बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो उसको लोग बड़ा अच्छा नहीं समझेंगे। अगर मैं भी उसका चरित्र अच्छा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो उसको कोई पूछेगा नहीं, जिसके पास पैसा है उसको ही लोग पूछा करेंगे। और जो चिकनी चुपड़े बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। और जो बहुत ही चिकनी चुपड़े बातें करेगा, फिर बातें करेगा, व्यवहार कुछ नहीं उसका, सिर्फ बातों से ही वो पंडित माना जाएगा कि ये वहाँ बहुत बड़ा पंडित है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बातें करता है। और यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण माना जाएगा। धन नहीं है तो अपवित्र है, उसके पास कुछ गुण नहीं है, और जो दिखावा है उसको ही अच्छा माना जाएगा। सब दिखावे पे बोलते हैं ना आजकल, सब दिखावे का जमाना है, कैसा कपड़ा पहना है किसने, लेकिन अंदर उसका मन कितना मलिन है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अच्छा बाहर से दिख रहा है मतलब अच्छा है। कभी हम कपड़ा पहनते हैं तो खरीदते हैं, सोचते हैं कि अच्छा आयन किया हुआ, प्रेस किया हुआ, इस तरीके का कपड़ा चाहिए ताकि लोग देखे, तो हम देखते हैं कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, तो लोग भी देखते हैं कि कितना अच्छा कपड़ा पहना है। कोई अगर खराब कपड़ा पहना है तो उसको लोग नजरअंदाज करते हैं कि ये कुछ काम का नहीं है। विवाह मौखिक स्वीकृति से द्वारा व्यवस्थित होगा, और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसके केवल स्नान किया है तो। बोलते कि विवाह मतलब जैसे विवाह का पहले अच्छा सा कुछ बंधन रहता था, तो बहुत सारी पूजाएं होती थी और सब संस्कार होने के बाद विवाह माना जाता था, लेकिन अभी सब मौखिक, जैसे बोलते हैं ना आजकल लिव इन रिलेशनशिप, कह रहता है कि मुझे हमें एक दूसरे से प्यार है, प्रेम है, हम एक साथ रहेंगे, विवाह की जरूरत नहीं है। अगर हमें अच्छा लगा 4-5 साल रहने के बाद तो फिर देखेंगे विवाह करने का नहीं करने का। मतलब हमें क्या करना है, साथ में रहकर सिर्फ अपने इंद्रियों को उपभोग करना है, विवाह के बंधन में जाना नहीं है, और बच्चे का इसका कुछ ये नहीं है, सिर्फ हमें उपभोग लेना है, उसके बाद रिलेशन नहीं जमा, रिलेशन तोड़ो, वापस दूसरे के साथ रहो। तो ये आजकल का परिस्थिति है कि लिव इन रिलेशनशिप, तो वो जो है भगवदगीता के आधार पर बहुत ही घिनौना चीज माना जाता है और उसको अच्छा माना नहीं जाता इसके हिसाब से। और अगर हम सिर्फ स्नान कर ले तो और अच्छा सा मेकअप कर ले, आजकल तो स्नान भी नहीं करते, सिर्फ परफ्यूम मारते हैं। हॉस्टल में क्या करते हैं पता है, हॉस्टल में घर पे भी परफ्यूम मार लेंगे और 7-7 दिन स्नान नहीं करेंगे, और कपड़ा भी धोएंगे नहीं, जींस का पैंट पहनेंगे उसको 1 महीना चलाएंगे, और ऐसे ही चलता है आजकल हॉस्टल में, सब कुछ देखने को मिलता है। और स्प्रे मारेंगे और बोलेंगे कि ये स्प्रे मारेंगे तो तुमको जो है अपोजिट दो जेंडर है वो अट्रैक्ट होगा, वो स्प्रे मारो, ये स्प्रे मारो, सिर्फ स्प्रे मार के ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करो, स्नान करने की भी जरूरत नहीं, ऐसा बोला जाता है। ये सब जो है कलयुग के इतने सारे जो है दुर्गुण बताए गए हैं। और बाद में बोलते हैं कि तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। मतलब कोई तीर्थ स्थान जाना चाहता है, बोलते हैं कि हमें 4 धाम जाना है, तो वहां जाके क्या करते हैं आजकल देखते हैं, वहां के जाके गंगा में डुबकी मारना है, यमुना में डुबकी मारना है, गंगा सागर जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे, वहां पे जो डुबकी मारेंगे और क्या करेंगे, अलग अलग चीजें खरीदेंगे, जो भी खरीदने का है डुबकी मारेंगे और साइट सीइंग करेंगे, सेल्फी खींचेंगे, फोटो खींचेंगे, लेकिन वहां पे जाके किसी साधु के सामने बैठ के कुछ सुनेंगे नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए, उसके तीर्थ स्थान में जाने का मतलब क्या है, वहां जाके हमें साधु के सुनना चाहिए कि क्या जीवन का महत्व क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए, मंदिर में आते तो मंदिर में भी हमें सुनना चाहिए, ये मंदिर का जो है उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि आए सिर्फ भगवान को देखे और चले गए हेल्प खींच के, लेकिन उससे क्या होगा, हाँ थोड़ा फायदा होगा कि हमने भगवान का दर्शन किया, लेकिन उसके अलावा अगर हम कुछ सुनेंगे तो वो हमारे साथ में जाएगा, हम घर में जाके उसको उसके बारे में सोच सकते हैं, जीवन में हमारे कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो लेकिन आजकल तीर्थ स्थान मतलब एक पर्यटन जैसा हो गया है, एक पर्यटन स्थल हो गया है। अब यहाँ पे भी हमने तीर्थ स्थान जैसा बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके क्या करें, मथुरा वृंदावन इसका लाभ ले सके, यहाँ पे उसका एक रिप्लिका बनाया गया है उसको समझ सके, और बहुत सारा हम टूर भी देते हैं। तो लेकिन क्या होता है, जैसे टूर के अंदर जाते हैं, पहले 100 लोग रहते हैं साथ में, 100 लोग है, थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा बताया, उसमें से 25 लोग गायब, सब सेल्फी खींचने में लग गए, किसी को कुछ पता नहीं क्या बता रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर थोड़ा आगे गए तो 50 हो जाते हैं, और जब निकलते निकलते सिर्फ जो बता रहा है वही रहता है, बाकी सब इधर उधर चले जाते हैं। तो किसी को कुछ लेना देना नहीं है, हर हम कि हम किस किधर आए हैं, हमें क्या सुनना है, कुछ किसी को लेना देना नहीं है, सब आते हैं। और तो ऐसा भी होता है कि लोगों को तो ये भी नहीं समझता कि हम कहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आके ऐसे हरकतें करते हैं कि जो मंदिर में नहीं करना चाहिए, ऐसा जो मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ जाएंगे कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसी हरकतें होती है। उनको वो पता नहीं कि हम मंदिर में आए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब जगह के जाने के लिए क्या होता है, एक पोशाक होता है ना, मिलिट्री का पोशाक है, पुलिस का पोशाक है, जब स्कूल में जाते उधर पोशाक है, सब जगह ये पोशाक है, लेकिन मंदिर में आने के लिए कोई पोशाक नहीं पहनता, जो जिसका मन जो है वही पहन के आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि भाई अच्छे से हमें जाना चाहिए हमारा, तो हम देखते हैं कि आजकल जो संस्कृति हमारा पाश्चात्य लोग फॉलो कर रहे हैं, और पाश्चात्य लोग हमारा संस्कृति हमारा पोशाक पहन के आ रहे हैं, जो हम पहनते हैं, जो पहनना चाहिए हमें संस्कृति में, और हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं वो पाश्चात्य पोशाक पहन के आते हैं, वो मैं वर्णन नहीं करना चाहता, आप सब लोग देख सकते इधर उधर, लेकिन बता रहे कि जिधर कहाँ पे जा रहे हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें किस मूड में जाना चाहिए, किस कॉन्शियसनेस से कहाँ पे जाना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक आध्यात्मिक जगह पे आए हैं, तो क्या हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए, किस मूड में जाना चाहिए, सिर्फ हम घूमने के लिए नहीं आए हैं। तो इसलिए तीर्थ स्थान सिर्फ घूमने का जगह माना जाएगा, सिर्फ डुबकी लगाओ और पाप को निकालो, ऐसा लोगों का मानना है, और फिर वापस चालू करो, हाथी गया बहुत गंदा हो गया है, पानी में जाएगा अच्छे से क्लीन हो जाएगा, वापस आएगा, वापस क्या करेगा, लोटपोट होगा, किसके अंदर, मिट्टी के अंदर वापस। तो वैसे ही उसको बोलते हैं कुंजर चौसव, कुंजर मतलब हाथी का स्नान। तो हमें हाथी का स्नान की तरह नहीं करना है, हमें जाके पवित्र होना है, तो वापस अपवित्र नहीं बनना है। और बोलते हैं कि सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आधारित होगा, कि कैसा हेयर स्टाइल है उसके ऊपर लोगों का सौंदर्य आश्रित होगा, ऐसा ना। आज कितने देखते हैं कि किधर भी जगह दिखा कंघी निकाला और चालू, अलग अलग हेयर स्टाइल, बहुत सारे हेयर स्टाइल रहते हैं आजकल, कितना बड़ा बाल, आपको पता है स्पाइक्स लगाते हैं, मतलब उसको कुछ कुछ लगाते हैं, बाद में अलग अलग कट करते हैं, हमारा तो एक ही कट है, टेंशन नहीं है, और अलग अलग उसके ऊपर, और टैटू बहुत सारे शरीर के ऊपर, पूरा शरीर टैटू से भर जाता है कि नहीं, इतना सारा कि जितना ज़्यादा शरीर को हम अलग अलग टैटू अलग अलग तरीके से बाल बनाएंगे तो उतना ज़्यादा हम सौंदर्यवान है ऐसा माना जाएगा, ये कलयुग का लक्षण है। तो इसी तरह जो जो पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, तो समस्त वर्णों से में से जो अपने अपने को सबसे बलवान दिखाएगा, बलवान दिखला सकेगा, वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करेगा, जो अपने को बलवान दिखाएगा वही राजा का शक्ति प्राप्त करेगा, वही राजा है ऐसा माना जाएगा। बल के ऊपर, पैसे का बल है बस, और लोगों का बल है उसके ऊपर खुद राजा बनेगा। तो ये बहुत सारे कलयुग के जो है लक्षण दिए हुए हैं। तो आज हम तो हमारा टॉपिक तो है आज का कलयुग की महिमा, ये कलयुग की महिमा है क्या बताइए, कि दुर्लक्ष्य तो दूर गति है, तो महिमा कैसे है। तो एक बार जैसे महाभारत का युद्ध खत्म समाप्त हो गया था, उसके बाद जो युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी का राजा बने, और जो भीमसेन है वो थे कि जो लोग बोलते ना कि लोगों का कुछ भी तकलीफ है उसको सुनने का और उसका उसको निवारण करने का, तो उनका वो काम था भीमसेन का। तो एक बार एक व्यक्ति आता है भीमसेन के पास और उनको पूछता है कि मेरा क्वेश्चन है कि मैं आज देखा कि मेरा जो खेत है उसमें जो बाढ़ लगी हुई है, तो वो बाढ़ उधर से चल के अंदर आ रही है और खेत की जो फसल है फसल को खा रही है, तो बाढ़ किसके लिए रहती है, खेत का रक्षण करने के लिए, लेकिन वो रक्षण नहीं कर रही है, खुद ही फसल को खा रही है, तो मुझे समझ नहीं रहा है कैसा क्यों हो रहा है। तो भीमसेन भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोलते कि इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, तो बोले कि आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ, वो आपको बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर उनको युधिष्ठिर महाराज के पास भेजते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद और एक व्यक्ति आता है और उनको पूछता है कि मैंने एक चीज देखा है कि जैसे ही एक बड़ा घड़ा है तो बड़े घड़े में जो है पानी भरा हुआ है, उसमें से मैंने 4-5 छोटे घड़े में पानी डाला और उस तो सब में पानी भर दिया, उसके बाद वो छोटे घड़ों में से मैंने फिर वापस बड़े घड़े में पानी डाला तो क्या हो गया, वो बड़ा घड़ा आधा ही भरा, पूरा भरा हुआ था उसका छोटे में डाला, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, वो पूरा भरना चाहिए ना, अगर वही पानी वापस डाला तो वो बोले वही समझा नहीं कि ऐसा कैसा हो सकता है, वो भी कंफ्यूज हो गए। तो फिर उसके बाद उसको बोले कि आप भी युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ, मुझे इसका आंसर पता नहीं है। फिर उसके बाद एक आदमी आता है, व्यक्ति आता है और बोलता है कि मैंने देखा कि जो है ना सुई, पता सुई निडल, उसमें छेद रहता है, उसमें से हम धागा डालते हैं, तो उस सुई के अंदर से जो है हाथी चला गया और लेकिन उसका पूछ अटक गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हाथी गया और पूछ अटक गया? तो भीमसेन बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाथी गया तो पूछ भी निकलना चाहिए। वो भी कंफ्यूज हो गया और फिर बोले कि ठीक है आप जाके अभी क्या करो, आप भी जाके युधिष्ठिर महाराज को पूछो। फिर उसके बाद और एक व्यक्ति आया, वो पूछता है कि एक जो गाय है अपने बछड़े को चाट रही है और इतना चाटा कि उससे खून निकलने लगा बछड़े से, देखते ना कि तो कोई अपना बछड़े को इतना नहीं चाटेगा कि खून निकलना जाए, तो उसको खून निकलने लगा इतना चाट रहे। तो भीमसेन को भी कंफ्यूजन हो गया, वो बोलते ये भी प्रश्न आप जाके युधिष्ठिर महाराज को पूछो। फिर और एक व्यक्ति आया पांचवा, वो पूछता है कि मैंने देखा कि एक साधु पुरुष आया, उसने क्या किया, बहुत बड़ा पर्वत है और पर्वत के ऊपर बहुत बड़ा मतलब पतला एक रस्सी बांधा, पतला सा धागे जैसा, और उसको खींचा, तो जैसे रस्सी से पर्वत को खींचा तो क्या हो गया, पर्वत पूरा टूट गया, उसका पूरा चूरा चूरा हो गया। बोले ऐसा कैसा हो सकता है, इतना बड़ा पर्वत है, छोटा रस्सी से खींचा तो पूरा ऐसा उसका चूरा हो गया, पूरा वो जमीन ध्वस्त हो गया, पूरा जमीन पर फैल गया। तो भीमसेन बोला कि पर्वत को तोड़ने के लिए तो वज्रघात करना पड़ता है, वज्र का आघात होगा तभी पर्वत टूट सकता है, तो इतना छोटा जो रस्सी है उससे कैसे पर्वत टूट सकता है? तो फिर भीमसेन को लगा कि जाके अभी मुझे अभी तब तक शाम हो जाता है। भीमसेन क्या करते हैं, अभी जाके युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये पांच व्यक्तियों को मैंने आपके सामने भेजा था, आपके पास भेजा था, तो एक प्रश्न का उत्तर मुझे भी समझा नहीं, तो आप कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर समझाइए। तो उसके बाद युधिष्ठिर पहला प्रश्न क्या था, किसको याद है क्या था पहला प्रश्न? तो सबसे पहला प्रश्न था कि जो पेड़ जमीन जो खेती है उसका जो बाढ़ है वो खेती को खा रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि कलयुग का लक्षण है, कि कलयुग में बोलते हैं रक्षक बन जाएंगे भक्षक, जो रक्षक है जो पॉलिटिशियन है जो पुलिस है वो जो हम बोलते हैं तो क्या हो गया, वो भक्षक, वही जनता को लूटना चालू कर देंगे, एक कलयुग का लक्षण है। फिर दूसरा होता है कि जो गड़ा है, एक बड़े घड़े में से छोटे घड़े में पानी डाला और फिर वापस बड़े घड़े में डाला तो वो आधा ही भरा, तो बोला कि जब हम किसी के ऊपर कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ उपकार करेंगे, माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो अगर उस रिटर्न आना है तो कभी वो रिटर्न नहीं आएगा, वो जितना चाहे उसका कभी आएगा नहीं, माता उनको जो है कभी, जैसा देखते हैं आजकल माता पिता को कहाँ भेज दिया जाता है, वो जो है वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, उनको बच्चों को कुछ पढ़ा नहीं है कि माता पिता ने हमें इतना बड़ा किया है, इतना लाड़ प्यार दिया है, लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं और माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, मतलब और वे भी देखते हैं कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो तुरंत भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, लेकिन जो किसी ने किसी का बुरा किया उसको याद रहता है, अच्छा है किसी को याद नहीं रहती है। तो ये है कि किस प्रकार जो है बड़े घड़े से छोटे घड़े में तो पानी जा रहा है पूरा, लेकिन छोटों में से बड़े में पानी नहीं आएगा, पूरा भरेगा नहीं। और तीसरा क्या था कि जो गाय है वो अपने हाथी का था, कि हाथी जो है इधर निडल से निकल जाएगा लेकिन उसका पूछ अटक जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि बोले कि कलयुग में जो बड़े बड़े कांड करेंगे, बड़े बड़े घोटाले करेंगे, वो जो है इजीली छूट जाएंगे, उसको गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगा, जो बड़े घोटाले करेंगे उसको गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगा, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें में कुछ करेंगे, गलती करेंगे, उनके पीछे पूरा CBI लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे उनको पकड़ने के लिए। तो अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उनको बोला कि अगर किसी के अकाउंट में कुछ पैसा आता है 5 लाख 10 लाख एक साल में ज़्यादा, तो उनको क्या इनकम टैक्स के कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? बोले हाँ, अगर एक साल में ज़्यादा पैसा आ गया तो हो सकता है प्रॉब्लम। मैं बोला फिर इतने पॉलिटिशियन करोड़ों हजारों करोड़ों का घोटाला करते हैं, उनको कोई इनकम टैक्स वाला पूछता है क्या? तो बोले उनको नहीं पूछते, जो कम करते हैं उनको पूछते हैं, तो मतलब उनको कोई नहीं पूछेगा, उनका पैसा है उनको कि भाई 5 साल में तेरा पगार सिर्फ महीने का 1 या 2 लाख रुपए, जैसा पॉलिटिशियन का पगार रहता है ना, मंत्री का या फिर खासदार आमदार, कितना पगार रहता है उनको 1-2 लाख रुपए, 5 साल में कितना कमा लेगा, तो उसका प्रॉपर्टी 5 साल में कितना हो जाता है, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़, उसको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन कोई अगर साधारण व्यक्ति थोड़ा सा 5-10 लाख एक्स्ट्रा कमा लेगा एक महीने एक साल में, थोड़ा इससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो उसको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा कि इतना पैसा किधर से आया तेरे पास, चल दिखा, एक किधर से तेरा सोर्स क्या इनकम का, वो सब उनको पूछेंगे। एक बार ऐसा हुआ था कि एक जो भेल बेचता है ना भेल, तो इतना फेमस भेल वाला था कि उसका वो रोज हजारों लाखों रुपए कमा लेता था, इतना फेमस था। तो लेकिन वो तो दुकान रोड पे है तो कैसे पता चलेगा कि उसने कितना पैसा कमाया कितना गया। तो वो भेल खाने के बाद लोग क्या करते हैं, वो कागज जो है कचरे के डब्बे में डालते हैं। तो एक दिन वो इनकम टैक्स वाले आए और रात को उसका कचरे का डब्बा उल्टा किया और सब कचरे के डब्बे में जो भी कागज थे सबको गिना कि कितना भेल बेचा करके। तो मतलब देखिए, एक भेल बेचने वाला जो आदमी है उसके पीछे लोग लगे हैं इनकम टैक्स वाले, लेकिन जो देश को बेच के खा रहे हैं उनको कुछ बड़ा नहीं है, वो खाने दो जो जो कर रहे हैं। तो दैट इज आजकल के जो है कि किस प्रकार जो है बड़े बड़े लोग हाथी निकल जाएंगे, लेकिन जो पूछ है जो कुछ छोटे से कुछ गलती करेंगे वो अटक जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या है, बोला था कि जो बछड़ा है उस गाय उसको चाट रही है और इतना चाटा कि उसे खून निकलने लगा। तो इसका मतलब है कि कलयुग में अपने माता पिता ही बच्चों को बिगाड़ देंगे। ऐसा क्यों, बेटा खा ले, नहीं खाएगा ले मोबाइल देख के खा ले, फिर माता अपना मोबाइल देखेगी और बच्चा दूसरा मोबाइल देखेगा और खिला रही, मतलब मोबाइल देखो खिलाओ, तो फिर उसको आदत पड़ जाएगा खिलाने का। लेकिन पहले जब मोबाइल नहीं था बच्चे खाते नहीं थे क्या, खाते थे ना, उनको माता क्या करती थी कहानी सुनाती थी, अलग अलग कहानियां सुनाती थी, खाते थे और अलग अलग कहानी सुना के खिलाते थे, ऐसा नहीं है। तो लेकिन अभी क्या है, किसी में पेशेंस नहीं है कि बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कैसे कराया जाए, मोबाइल दिखा दिया तो क्या तुरंत तो चुप हो जाता है। लेकिन वो नहीं सोचते कि आगे जाके उसको मोबाइल गलत लग जाएगा, उसकी आंखें खराब हो जाएगी, इसलिए बच्चों को पहले से ही क्या होता है चश्मा, बचपन से चश्मा लग जाता है। तो और कुछ भी हो गया तो उसका तुरंत कुछ भी जो चाहिए उसको तुरंत दिया जाता है, उसको कुछ भी पहले मेरे को बचपन का याद है, अगर कोई छोटा भी चीज चाहिए तो दिन भर चार घंटा पांच घंटा रोना पड़ता था माता पिता के पीछे पीछे, ये चाहिए तभी जाके कुछ मिलता था, और कभी मिलता भी नहीं था। लेकिन अभी जैसे बच्चे ने बोला तो तुरंत मिल जाता है, जो चाहिए मोबाइल चाहिए ले ले, नहीं नहीं रोएगा, जैसे रोआ तो उसको मोबाइल, और बेचारा पूरा आंख के सामने पकड़ के गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, उसको आंख का क्या हुआ कुछ पता नहीं है। और ताकि मदर भी अपना टीवी सीरियल देखने में अच्छी बैठ जाएगी, मेरे को भी तकलीफ नहीं है, वो भी अपना खेल रहा है, लेकिन उसका भविष्य का क्या हो रहा है पता नहीं है, मोबाइल क्या देखेगा वो भी पता नहीं है। तो इसलिए आजकल तो उतना पूरा कि माता पिता ही जो है क्या हो गया, और क्या करते हैं कि अगर वो गलती से मंदिर में चले जाए तो बोलते मंदिर क्यों गया था, कौन बोला था मंदिर जाने के, हरे कृष्णा में क्यों गया था, उधर नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। पर पिक्चर गया तो चलेगा, किसी के साथ गया घूमने के लिए चलेगा, मंदिर मत जाना, मंदिर जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा, अच्छा है ना, जो गंदगी भरा निकल जाएगा, मंदिर नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्णा के मंदिर में जाना नहीं चाहिए, उधर जाके ब्रह्मचारी बन जाता है, उधर जाके तुम कांदा लहसुन छोड़ देगा, सब नॉनवेज खाना छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, फिर कैसा तेरा जीवन चलेगा, तू कैसा खुश रहेगा, ऐसा मतलब उनको ये रहता है। लेकिन तू अगर दारू पिएगा ये करेगा सब चलेगा, उसके लिए कोई ज्यादा ये नहीं करता, लेकिन मंदिर जाएगा तो तकलीफ है। तो इस प्रकार आजकल ये भी लक्षण कलयुग का है। और फिर पांचवा क्या था कि अगर हम वो जो साधु है थोड़ा रस्सी थोड़ा धागा बांध के क्या करते हैं पत्थर बड़े पर्वत को बांधते हैं और खींचते हैं तो पर्वत क्या हो जाता है चूर चूर हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि कलयुग में सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके जो हजारों जन्म के पाप है हमारे जमे हुए हैं वो पूरा जमीन दोष हो जाएंगे, पर टूट जाएंगे। क्या बोलते हैं कि हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेवा नास्तेवा नास्तेव गति अन्यथा। तो कलयुग में क्या है हरि का नाम ही केवल गति है। जो अगर हमें निकलना है कलयुग के जो जो हम लक्षण देखे हैं इसमें से बाहर निकलना है तो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है ये लक्षण जो कलयुग के जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमें उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। सत्ययुग में भगवत प्राप्ति का क्या करते थे, तपस्या करते थे हजारों साल, त्रेतायुग में जो यज्ञ हवन करते थे, द्वापर युग में क्या करते थे मूर्ति पूजा करते थे, और कलयुग में से हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। इति षोडशकम नामनाम कलि कलमश नाशनम नथ परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो इस 16 अक्षर का जो महामंत्र है इति षोडशकम नामनाम, ये 16 अक्षर का नाम है महामंत्र है, कलि कलमश नाशनम कलि के सब कलमश को नाश कर देगा, नतः परतर उपाय इससे बड़ा उपाय कोई भी नहीं है। तो ये जो है ब्रह्म नारद पुराण में दिया हुआ है इसमें कि ये शिव हरे कृष्ण महामंत्र जप करके सब कलि के कलमश जो भी हमने सुने अभी तक ये सब नाश हो जाएंगे। हमें और 36 जैसा 33 जैसा और द्वापर जैसा तपस्या यज्ञ हवन मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, शिव हरि नाम से हो जाएगा। तो ये जो हरि नाम है इतना पावरफुल है, तो यही कलयुग का मेन जो है कलयुग की महिमा, यही कलयुग की महिमा है। जैसे जब महाभारत का जब खत्म हुआ, जो युद्ध हुआ, तो भगवान कृष्ण ने क्या बताया, भगवत गीता, और भगवत गीता के आखिरी में क्या बताया, क्या उसका चरम श्लोक क्या है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरण व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामी मा सुच, सर्वधर्म का परित्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ तो क्या होगा, मैं सब तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और ऐसा भगवान ने बोला और फिर वो अपने धाम गोलोक वृंदावन चले गए। लेकिन जब गोलोक वृंदावन गए तो उन्होंने सोचा कि अभी कलयुग चालू हो जाएगा, लेकिन कलयुग में तो सब अपना अपना धर्म का पालन करेंगे, किसी को कुछ पड़ा नहीं है कि क्या है, बस मैं कुछ धर्म पालन कर रहा हूँ करके सब जगह हर एक गली में कोई ना कोई साधु बैठा है, कोई ना कोई बैठा हुआ है, कोई बाबा बैठा है, भगवान का एक एक जो है अवतार बैठे हुए अलग अलग गली में। भागवत में दिया है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएगा, लेकिन अभी बहुत सारे कल्कि अवतार आके चले भी गए, मतलब लोगों को कुछ पढ़ा नहीं कि शास्त्र में क्या दिया है, कुछ मानता नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि कलयुग में कोई फॉलो करने वाला नहीं है, तो और कुछ धर्म का त्याग नहीं करेंगे तथाकथित धर्मों का, मेरे शरण में आएंगे तो फिर मैं उनको पापों से मुक्ति कैसे दिला पाऊंगा, अगर मैं शरण में आएंगे तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा। तो कि क्या सोचे उन्होंने, क्या किया, फिर 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण खुद राधा रानी के भाव में प्रकट हो गए, एक भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हरे कृष्ण जो मंदिर में हमारे राधा कृष्ण का डीटीज है, उनके बाजू में जो है राइट साइड में चैतन्य महाप्रभु, वो खुद कृष्णा है और राधा रानी का भाव लेके अवतरित हुए एक टीचर बन के। और ये टीचर बच्चों को पढ़ाता है कि क्या करना चाहिए कैसा, उनको टीचर को सब पता है, उनको पीएचडी लेवल तक बच्चा पता है, लेकिन बच्चों को ABCD सब कुछ सिखा रहे हैं। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाने के लिए आए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो आपको चारों तीनों युगों में जो भी तपस्या यज्ञ हवन जो करना है उसका फल सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से मिल जाएगा, और कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कोई स्कूल में क्या होता है, पासिंग मार्क रहता है, कितना रहता है, 35%। लेकिन स्कूल में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं इंटेलिजेंट, उनको 95 भी मार्क मिलता है परसेंट, फिर कुछ रहते हैं जिनको 70%, 60%, किसी को 35 हो, किसी को उसके नीचे भी मिलता है। तो अपने अपने बुद्धि के हिसाब से लोगों को मार्क्स मिलते हैं और वो अगले स्टैंडर्ड में जाते हैं। तो क्या होता है, लेकिन किसी किसी को क्या होता है, एक दो साल तक उधर ही अटके रहते हैं कि 35 मार्क भी नहीं मिलते, पासिंग मार्क भी मिलते नहीं। तो ऐसे उनके लिए क्या करते हैं, उनको क्या दिया जाता है, फिर ग्रेस मार्क दिया जाता है ना, और फिर धक्का मार के आगे किया जाता है। तो वैसे ही सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग के इंटेलिजेंट लोग है, लेकिन कलयुग का हमारा डफर बैच है जिसको 35% मार्क पासिंग मार्क भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमें क्या दिया है, बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और आपको जो सब कुछ मिल जाएगा और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको भी करना नहीं चाहते। मतलब टीचर बोल रहे हैं स्टूडेंट को कि तुम्हारा एग्जाम है, तुम आ जाओ और आंसर शीट रखा रहेगा, आपका नाम लिखो चला जाओ तो क्या हो जाएगा, पास हो जाओगे। लेकिन स्टूडेंट बोलता है कि टीचर को वो आंसर शीट घर पे लेके आओ, घर पे लिखूंगा मैं, मतलब उतना भी तकलीफ नहीं करना चाहता कि मैं चल के स्कूल में जाऊं और उधर लिखूं। तो हम इतना भी तकलीफ नहीं करना चाहते कलयुग में कि कोई बुला रहा है तो हम मंदिर में जाए, दर्शन करें, सत्संग सुने, तो उतना भी हमें अब भगवान ने क्या किया, पूरा खाना हमारे मुंह के पास लाके हमारे मुंह के अंदर डाल के दिया है। अभी क्या बोल रहे हैं, भाई अभी चबाओ, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं मैं चबाऊंगा, मैं नहीं, आप ही चबा के दो। तो अभी इतना भी अगर भगवान सब कुछ करके दे रहे हैं, थाली सामने रखे उसका निवाला देके हमारे मुंह में डाल भी रहे हैं, हमें चबाना तो चाहिए ना, तो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, सब कुछ इतना करके दे रहे हैं। तो एक कलयुग में इतना भगवान ने, जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी अवतरित हुए पंचतत्व, तो चैतन्य महाप्रभु लोगों के पैर पड़ते थे और नित्यानंद प्रभु लोगों के पैर पड़ते थे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के प्रभु लोगों के पैर पड़ के बोलते थे कि भगवान का नाम लो, अगर आप भगवान का नाम लोगे तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। मतलब भगवान खुद लोगों के पैर पड़ के बोल रहे कि भगवान का नाम करोगे तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। इतना कोई कुछ कर रहा है तो भी लोगों का इतना ये नहीं है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्या करना क्या है, सिर्फ माला लेना है और क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग बोलिए, हाथ तो खड़ा कीजिए, साथ में बोलिए भी, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में अगर सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो सब कुछ हमारा जो है पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएगा। पुण्य भी नष्ट होना चाहिए कि नहीं? नहीं, पुण्य नष्ट होगा तो अगर हमारा पुण्य रह जाएगा तो क्या होगा, हमको वापस जन्म लेना पड़ेगा। वो पुण्य को भोगने के लिए वापस ये शरीर मिलेगा, वापस ये शरीर की आत्मा से जाना पड़ेगा, और पाप करेगा तो भी शरीर मिलेगा। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जो ना पुण्य हो ना पाप हो, वो यानी हमें भक्ति में रह के कर्म करेंगे तो उसका ना हमें पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा, उसको अकर्म कहा जाता है। एक कर्म रहता है, एक विकर्म रहता है और एक अकर्म रहता है। तो अकर्म करेंगे तो हमें ना पुण्य लगेगा ना पाप रहेगा। वो सब कुछ जैसे अर्जुन को बोला कि तुम क्या करो, अर्जुन बोले कि मैं इनको मारूंगा तो सबको मेरे को पाप लगेगा। भगवान बोले मेरे लिए करो, तुम्हारा कर्तव्य समझ के करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, अगर तुम जीते तो तुम्हें क्या होगा, ये पूरा संसार का राज्य मिलेगा, और हारे तो स्वर्ग लोग जाओगे, और फिर तुमको जो है मेरे आज्ञा पालन के इसलिए तुम्हें भक्ति में भी तुम आगे बढ़ोगे। तो इसलिए जो अगर हम भगवान का कहना मानते हैं और जो भक्ति करते हैं और जो भी फिर हम कर्म करेंगे हमारे जीवन में, वो क्या हो गया, जो है ना कर्म रहेगा ना अकर्म रहेगा, वो विकर्म रहेगा, अकर्म बन जाएंगे। लेकिन कोई लोग क्या बोलते हैं, ठीक है हम करेंगे, अभी का इतनी जल्दी है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी, जब जीना है बरसों, अभी तो बरसों जीना है किसको। लेकिन हमें पता है कि हमारा एक्सपायरी डेट कभी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज देखते हैं आजकल बारिश हो रहा है, किधर भी कुछ हो जाता है ना, कभी किसी को पता नहीं कभी क्या होने वाला है। फिर भी हमें आशा है कि हम बहुत सारे अंत्य जो रहता है लोगों का, जो मरते हैं उनको जाते हैं अंत्येष्टि पे जाते हैं, उनके साथ जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं उनको लेके जाते वक्त, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो अगर राम नाम सत्य है ये अगर उसको पहले बताया होता जब जिंदा था आदमी तो कितना अच्छा होता था ना, अभी मरने के बाद बता के क्या फायदा। और फिर उसको जाके उधर शमशान में जाके उनको जला देंगे, गाड़ देंगे, फिर बोलेंगे कि देखो एक दूसरे से बातें करेंगे, जीवन में कुछ नहीं रखा है, सबको इधर ही आना है, और फिर जैसे बाहर आ गए सब कुछ भूल जाएंगे, वापस अपने कार्यकलाप में लग गए। उसको कहते हैं स्मशान वैराग्य, जो स्मशान में आता है ना उसका स्मशान वैराग्य कहा जाता है, कि जीवन में कुछ नहीं लगा है रखा है। और कोई लोग बोलते कि हाँ भगवान का नाम लेंगे लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं है, जब बूढ़े हो जाएंगे कुछ दिखेगा नहीं, चलने को तकलीफ होगा, कुछ खाएगा पचेगा नहीं, किधर जा नहीं सकेंगे, तभी क्या करना है, वही करना है, भगवान का नाम ही लेना है। तो अगर हम जीवन भर उसका अगर हमें उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे लेवाएंगे भगवान का नाम। तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, और व्यापारी पूरा कपड़े का व्यापारी था, उसने बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत बड़ा कारोबार है। उसका बेटा था, वो फिर उसका व्यापार देखता था, बड़ा हो गया, लेकिन बेटा जो था भक्त था, व्यापारी भक्त नहीं था। तो जो व्यापारी है तो उसको अभी बूढ़ा हो गया है, तो भक्त उसके बेटा जो भक्त था तो वो सोचता था कि मेरे पिताजी ने भक्ति करना चाहिए। अभी उनका जो है अभी कितना समय किसी को पता नहीं है, एक दिन तो सबको जाना है। तो फिर वो साधु को बुला के लाते हैं और साधु को बोलते हैं कि आप इनको पूरा उपदेश कीजिए गीता भागवतम का। तो उपदेश करते हैं, उपदेश किए तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भक्त बोलता है कि आपने उनको बताया उसको कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो आप वापस उनको क्या कहें, चार धाम लेके जाइए, चार धाम लेके जाएंगे तो कुछ उनको फर्क पड़ेगा, अलग अलग जगह पे जाएंगे, उसका मन चेंज हो जाएगा। तो फिर पिताजी को चार धाम घुमा के लाते हैं। तो पिताजी आने के बाद बोलते हैं कि मेरा पांचवा धाम मेरा दुकान है, आके वापस अपने दुकान में जाके बैठ जाता है। बेटा फिर परेशान होता है कि क्या किया जाए। तो साधु को बोलते हैं कि वापस आप कुछ तो और एक बार आखिरी प्रयास कीजिए, मेरा पिताजी का शायद माइंड चेंज हो जाए। तो फिर साधु बोलते ठीक है, तो उसको वाराणसी लेके जाते हैं। वहां पे मनी करने का घाट है, आपने नाम सुना रहेगा, वहां पे सैकड़ों लाशें जलती रहती है। ऐसा बोलते कि जहां लाशें जलती है जो मरता है वहां पे, तो उनके कान में शिव जी आके क्या करते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो वहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो सब सैकड़ों लाशें जल रही है, वो देख के क्या होता है, वो व्यापारी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है सब देख के। तो साधु को लगता है चलो भाई इसका हृदय में अभी परिवर्तन हो गया है, कि देखो कि जीवन में सबको अभी आखिर में इधर ही आना है, सबका यही अंत्य है, कि कुछ भी करे जीवन में सबको एक बार मरना ही है। तो साधु खुश हो जाता है कि भाई कुछ तो फायदा हुआ गया मेरे इसको इधर लाने का। तो साधु जाकर पूछता है कि बताओ तुमको क्या ऐसा लगा, क्या तुमको रियलाइजेशन आया कि तुम इतना रो रहा है। तो बोलता है व्यापारी मैंने मेरा पूरा जीवन कपड़े के व्यवसाय में बर्बाद कर दिया, मुझे अगर पता होता कि लकड़े का इतना डिमांड है तो मैं लकड़े का धंधा करता था, क्योंकि देख रहा है कि लकड़ा इतना लोगों को जलाने के लिए लकड़ा लग रहा है, बोले लकड़े का डिमांड है इतना तो मुझे लकड़े का धंधा करता था तो मैं कितना पैसा कमा लेता था। तो क्या सोचा है वो जीवन भर उसने सिर्फ पैसा कमाने का बात किया और बाकी कुछ नहीं सोचा। तो इसलिए जो है जीवन भर हम कुछ करेंगे वही चीज हमें लास्ट में आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। जैसे अगर स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करेगा तो आखिरी जब उसका फाइनल एग्जाम रहेगा तो कुछ लिख पाएगा, अगर नहीं लिख पढ़ाई किया तो अपने आप उसको याद नहीं आएगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार जीवन भर अगर हम जो है जो नाम लेने का अगर हम ट्राई करते रहेंगे उसका जो है क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब मरेंगे तभी भगवान का याद आएगा, नहीं तो भगवान का याद नहीं आएगा, इस दुनिया का याद आएगा। और फिर भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि यम्यम वापिस मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। यम्यम वापिस मरण भावम, जिस भाव का हम स्मरण करेंगे त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, ये कलेवरम मतलब है शरीर को छोड़ने के समय पे जिस चीज का स्मरण करेंगे वैसी गति हमारी होगी। क्यों? सदा तद भाव भाविता, उस भाव में हमेशा रहने के कारण उस प्रकार का शरीर हमें मिलेगा। अगर भगवान का याद करेंगे तो भगवान के जैसा सच्चिदानंद शरीर मिलेगा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है, लेकिन इस दुनिया के बारे में सोचेंगे तो फिर वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा, इस दुनिया के बाहर नहीं जा पाएंगे। सिंपल है, जैसी सोच वैसा उधर जाएंगे, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल है कि नहीं। भगवान का नाम सोचेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, इस दुनिया के बारे में सोचेंगे तो इस दुनिया में वापस आएंगे। तो इतना सिंपल फॉर्मूला है। और कलयुग में जो है जैसे पहले युग में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वैकुंठ तक जा पाएंगे, लेकिन अगर कलयुग में भगवान की भक्ति करेंगे हरे कृष्ण नामदा जप करेंगे तो भगवान का जो सबसे हाईएस्ट स्थान है जिसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है वहां पे हम जा सकते हैं। तो इसलिए कलयुग में ऐसा है तो जो देवी देवता है वो भी भगवान का प्रार्थना करते हैं कि हमें कलयुग में मनुष्य जन्म मिले भारतवर्ष में। तो भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है कलयुग में वो बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा, भारत भूमि ते होइला जन्म सार्थक करी करो परो उपकार, मतलब हमारा अगर भारत भूमि में जन्म हुआ है तो हमें अपना जन्म पहले सार्थक करना है भगवान की भक्ति करने के करके, और फिर दूसरों को उसके बारे में बताना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भारत भूमि ते होइला जन्म जाओ अमेरिका और यूरोप, वहां जाके क्या करो घूमो, उधर जाके बैठो, उधर जाके क्या करो पैसा कमाओ, भारत की संस्कृति को भूल जाओ और पाश्चात्य संस्कृति को हम एक हमारे आत्मसात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और जो पाश्चात्य देश के लोग हैं वो हमारे इधर आ रहे हैं और हमारी संस्कृति को ले रहे हैं और हमारे लोग उधर जाके उनके संस्कृति ले रहे हैं। तो जो चीज ऑलरेडी उन्होंने खा के थूक दिया है कि उनको पता चल गया इसमें कुछ रस नहीं है, वो रस लेने के लिए वो इधर आए हैं हरि नाम का रस, भक्ति का रस लेने के लिए। लेकिन वही चीज जैसे गन्ने का रस निकल दिया तो उसमें अंदर कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। फिर भी उसको चबाएंगे कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। तो वो लोगों ने सब कुछ चबा के छोड़ दिया है, लेकिन हम जाके अभी उठा के चबा रहे हैं, उसमें कुछ मिलेगा। वो जो लोग पाश्चात्य देश के लोग ऑलरेडी जो सब कुछ कर चुके हैं, जो भी उनको इंद्र तृप्ति करने इंद्र भोग करने सब कुछ करके ट्राई हो गया उनका, अभी फाइनली उनको पता चला उसमें कुछ रस नहीं है, पूरा बिना रस का है। तो लेकिन इसलिए वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वापस उसी रस को ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो देखिए उन्होंने इंडिया में पहले भारतवर्ष में जो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसको मानने को तैयार नहीं था क्योंकि सबको लगता है कि मुझे राम कृष्ण सब कुछ पता है। तो फिर उनके जो गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने उनको 1922 में बोला था कि आप पाश्चात्य देश में जाके भक्ति का प्रचार करो, तो उधर प्रचार करेंगे तो वो लोग भक्त बनेंगे, तो उनको देख के हमारे जो इंडिया के जो भारत के लोग हैं वो भक्त बनेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं जो पाश्चात्य देश के लोग करते हैं वही हम करते हैं। तो फिर उन्होंने अमेरिका जाके प्रचार किया, जो उनका एज 70 साल का था, हार्ट अटैक आया उनको शिप पे जाने के समय, 2-3 हार्ट अटैक आया, फिर भी उनको उधर जाके कुछ रहने का व्यवस्था नहीं था, ऐसे में उन्होंने प्रचार किया और 11 सालों में 108 मंदिरों की स्थापना की, हजारों शिष्य बनाए, पूरे दुनिया में जो है वो घूमे और इतना प्रचार किया। और जब वो उनके जो पाश्चात्य देश के शिष्य है उनको लेके भारत में आए, फिर उनको देख के हमारे देश के जो लोग है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चालू किया, फिर उनको लगा कि ये हमारे माल है अभी इम्पोर्टेड होके आया है तो हमें लेना चाहिए, तो हमें सब कुछ क्या चाहिए, इम्पोर्टेड चाहिए। तो जब वो भक्ति इम्पोर्टेड होके आई तो हमने उसको ग्रहण किया। तो इसलिए जो है, जो भक्ति है ये कलयुग का सार है, और उसके लिए जो है हरे कृष्ण महामंत्र ये सबसे मुख्य जो है हमें दिया है। जो खुद कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु बन के आए, राधारणी का भाव लेके आए हैं, तो बोलते कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। कले दोष का पूरा साम्राज्य है, अस्ति एक महान गुण। सिर्फ भगवान का कीर्तन करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। कीर्तन करेंगे तो बस कीर्तन करना है। ऐसा बोलते कि शिष्टाष्टक में चैतन्य महाप्रभु जो बोलते कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो हृदय का जो आईना है वो क्लीन हो जाता है। भव महादावाग्नि निर्वापनम, जो दावाग्नि है, जो मटेरियल जो संसार है उसका जो अग्नि है उसका पूरा निर्वापन हो जाएगा। और जो है हमारा जो जो मटेरियल जो जलन है या फिर जो हमारा जल रहे हैं जो भौतिक संसार में, वो ताप कम हो जाएगा और हमें पूरा आनंद मिलेगा। और परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, और हम इस श्री कृष्ण संकीर्तन है सब चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। जो अगर हम इसको करेंगे तो सब चीज़ों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे अनर्थ है हमारे हृदय में उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये हरिनाम का महिमा है। तो कलयुग में मैं भी एक किस्से के तरह समान है, एक बड़े कच्चे के ढेर के समान है जैसे। लेकिन कच्चे के ढेर आप देखेंगे तो उधर सब जो कौन जाता है वहाँ पे कौवा है, और जो जो मक्खिया है वो कच्चे के ढेर में घूमती रहती है गंदी चीज़ खाने के लिए। लेकिन उधर एक कोई फूल रहेगा तो फूल खाने की उसमें से वहाँ मधुमक्खी जाएगी और उसमें से क्या निकालेगी, मधु निकालेगी। वो बाकी कचरे में नहीं जाएगी। और कोई बड़ा रोज का गार्डन है तो गार्डन में सब जगह रोज है, लेकिन कहीं पे अगर स्टूल है टट्टी है तो उधर मक्खी जाएगी। लेकिन जो मधुमक्खी है वो रोज में जाके उसका जो हनी है उसको निकालेगी। उसी प्रकार ये पूरा हम देखते हैं हर सिटी में इतने सारे जगह है जो ये गंदगी के समान माने गए हैं। ब्रॉथेल्स है, बार्स है, सिनेमा गृह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बहुत सारी गलत चीज़ें होती है। और मंदिर भी है तो मंदिर को एक पुष्प के समान माना गया है जहाँ से हमें जाके भगवान के भक्ति का रस मिल सकता है। और बाकी जगह जो है गंदी जगह माना गया है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे कौन से लोग जाएंगे जो मक्खी के और कौवे के मेंटेलिटी के लोग है, वो ऐसे गलत जगह पे जाएंगे। लेकिन जो मधुमक्खी के मेंटेलिटी के वैसा उनका मन है, वो मंदिरों में आएंगे, वहाँ पे भगवान की भक्ति का आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार कलयुग में जो है, जो एक कच्चे के ढेर के समान है, उसमें जो हरे कृष्ण महामंत्र है एक रोज फ्लावर के एक गुलाब के फूल के तरह है, और उसका हम जप करते हैं तो हमें जो है भक्ति का रस मिल सकता है। तो इसलिए जो कलयुग में इतने सारे, जो हमने पहले शुरुआत में देखा कि इतने सारे अवगुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका हम जप करेंगे तो सब अवगुण से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रसिक गौर हरि प्रभु। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया कि किस प्रकार कलयुग में इतने सारे दोष होने के बावजूद अगर हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे सभी पापों का नाश हो जाएगा और हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो हमको चाहिए कि इस हरे कृष्ण संकीर्तन में भाग लेना चाहिए और ऊंचे स्वर में भगवान का नाम लेना चाहिए। तो मेरे साथ एक बार दोहराइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी इसके पश्चात श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा, उसमें सभी जन डांसिंग कीर्तन करते हुए भाग ले सकते हैं। शिला प्रभुपाद ने और उनके शिष्यों ने हमें अच्छी तरह से बताया है किस प्रकार कीर्तन में भाग लेना है। तो जब भी कीर्तन करने वाले प्रभु जी गाएंगे तो हमें हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करनी है और अपना राइट लेग आगे लेके एक बार, फिर पीछे लेके लेफ्ट लेग आगे लेना है। इस प्रकार डांस कर सकते हैं। और जब भी हम गाएंगे तो हमको भी हरे कृष्णा महामंत्र उनके पीछे दोहराना है और हाथ ऊपर कर सेम स्टेप्स, एक पैर आगे एक पैर पीछे, इस प्रकार डांस करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन करना है। 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद की भी व्यवस्था है, तो हम सबसे विनती करते हैं कि 12:30 बजे तक यहाँ पर कीर्तन में भाग ले, उसके पश्चात लंच प्रसाद के लिए जा सकते हैं। हरे कृष्णा।